धवला पुस्तक दसवी लेक्चर नंबर 20। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहंताणं। नमो सिद्धाणं। नमो आयरियाणं। नमो वज्रायाणं। नमो लोये सौवसाहुणं। कम्मठजनियवेयण उवहि समुत्तिन्नये जिनेनमिं वेयण महाहियारं विविहियारं परुएमो। आचार्य श्री वीरसेन स्वामी रचित यह धवला नामक टीका है, जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य। इसमें ये चौथा खंड, इसका नाम है वेदना खंड, और इसमें वेदना अनुयोग द्वार अपना चल रहा है। वेदना खंड में हमने नवी पुस्तक में कृति अनुयोग द्वार देखा था, यहाँ वेदना अनुयोग द्वार है। वेदना ने यह जब कर्म की बात है, कर्म को यहाँ वेदना कहा था। अब यहाँ बात यह हो रही थी गुणित कर्मांशिक जीव के, यानी ज्ञानावरणिक कर्म की, यानी द्रव्य प्रमाण बता रहे कि उसकी वेदना उत्कृष्ट किसके होती है, यानी परमाणु की संख्या उत्कृष्ट किसके होती है। तो वहां से शुरू किया था, जो जीव बादर पृथ्वी का एक में कर्म स्थिति माइनस साधिक 2000 सागर इतना घूमा, और फिर वहां से त्रस में उत्पन्न हुआ। उसमें वो सारे जो 6 आवास वो हर में घटित करना है। कौन से 6 आवास होते हैं, यानी उसमें उत्कृष्ट योग रखना है, क्योंकि उत्कृष्ट परमाणु का ग्रहण होता है। हाँ, पहले वही शुरुआत से वही बात है। एक इंद्रियों में भी पर्याप्तों के भव बहुत किए, अपर्याप्तों के थोड़े किए, जो पर्याप्ति छोटे काल में पर्याप्ति पूर्ण की उसने, वगैरह वगैरह। जब जब आयु का बंध होता था तो जघन्य योग से आयु का बंध हुआ। ये 6 आवास, योगावास, आयुवास, वो तो भवास, ये 6 प्रकार जो है। संकलेश ज्यादा हुए तो उत्कर्षण ज्यादा हुआ, अपकर्षण कम हुआ, ये सब उसमें लगा लेना। तो फिर वो एक इंद्रिय के बाद त्रस में आया, साधिक 2000 सागर। और ऐसे ही त्रस में भी पर्याप्तों के बहुत के अधिक बार उत्कृष्ट योग में रहा, वो सारी कंडीशंस लगा लेना। और फिर अंत में जाके 7वें नरक का नारकी हुआ, उसमें भी ये 6 आवास तो बता ही देना। अंत में जाके उसने फिर वो बताया था कि योग यवमध्य के ऊपर अंतर्मूर्त काल तक रहा, वो काल यवमध्य बताया था। फिर जीव गुणहानि अंतिम गुणहानि में आवली के असंख्यात भाग रहा, उसके लिए वो सारा क्या है वो सब उन्होंने विस्तार से बताया था। उसके बाद उन्होंने बताया कि द्विचरम और त्रिचरम समय में उत्कृष्ट संकलेश को प्राप्त हुआ। और फिर 108 पेज पर कल बताया, चरम और द्विचरम समय में उत्कृष्ट योग को प्राप्त हुआ। तो उत्कृष्ट योग से उसने उत्कृष्ट समय प्रबद्ध ग्रहण किया। ऐसे जीव को अंतिम समय में ज्ञानावरण की उत्कृष्ट द्रव्य वेदना होती है। ये अभी हम पढ़ेंगे यहाँ पर 109 पेज पर 32 नंबर का सूत्र। तो कहते, चरिम समय तब भवत्थो जादो तस्स। चरिम समय तब भवत्थस्स नानावरणीय वेयना दौवदो उक्कस्स। चरम समय में तद्भवस्थ हुआ, तद्भवस्थ ने नारकी रहा, चरम समय में वही उसी नारकी के भाव में है वो। उस चरम समय में तद्भवस्थ हुए जीव के ज्ञानावरण की वेदना द्रव्य की अपेक्षा उत्कृष्ट होती है। द्रव्य की अपेक्षा उत्कृष्ट करते थे उसकी संख्या, परमाणुओं की संख्या मैक्सिमम पाई जाती है। वो कब से, वो हमने 70-30 कोड़ाकोड़ी सागर से लेकर वो सभी बातें अभी हमने देखी थी, है ना। शंकाकार पूछते हैं, यही नारक भव के अंतिम समय में उत्कृष्ट स्वामित्व किस लिए दिया जाता है। वो कहते, यहाँ क्यों दे रहे हैं, अभी और उसको लाओ ना, वहां से पंचेंद्रिय तीरेंच में जन्मेगा, वहां और ग्रहण करेगा, तो उसको उत्कृष्ट कहो ना, ये कहना चाहते हैं। नहीं, क्योंकि व्यक्ति स्थिति का अनुसरण करने वाली ही शक्ति स्थिति होती है, उससे अधिक नहीं होती। हमने देखी थी व्यक्ति स्थिति यानी जो कर्म की जो स्थिति बंदी है, जिस निषेक में वो कर्म परमाणु पड़े उसको उसकी व्यक्ति स्थिति कहते हैं। और शक्ति स्थिति, जैसे ज्ञानावरण की शक्ति स्थिति कितनी है, तो 30 कोड़ाकोड़ी सागर, तो उतने ही ऊपर जल सकता है, उससे अधिक नहीं। अभी हमने वो जीव को कहा बादर एकेंद्र में घुमाया था, कितना घुमाया था, 30 कोड़ाकोड़ी सागर में साधिक 2000 वर्ष कम, यानी उसमें जो पहले समय में उसने बांधे थे कुछ परमाणु अभी तक विद्यमान है, वो नेक्स्ट समय में नहीं रहने वाले, उसकी शक्ति स्थिति इससे अधिक नहीं है, ये कहना चाहते। इसलिए यहाँ पर लेना है इस अंतिम भव में, यानी 30 कोड़ाकोड़ी सागर पहले बंधे हुए कुछ परमाणु अभी विद्यमान है, वो अभी है, वो नेक्स्ट समय में वो नहीं रहेंगे, इसलिए यहीं पर घटित करना है। इसका कारण यह है कि कर्म स्थिति के प्रथम समय में बंधे हुए, कर्म स्थिति के प्रथम समय में वहां से हमने बादर एकेंद्रिय में वो घूमना चालू किया था, है ना, उसमें बंधे हुए कर्म स्कंधों का कर्म स्थिति से आगे के समयों में अवस्था नहीं पाया जाता, क्योंकि वो परमाणु अभी तक यहाँ कुछ पड़े हैं, उसके नेक्स्ट समय में वो एक लॉट तो नहीं रहेगा, वो निकल जाएगा, इसलिए यहीं तक ले लेना है। आगे भी ज्ञानावरण कर्म का बंध होता है, क्योंकि ज्ञानावरण कर्म का बंध तो वहां से संगी पंचेंद्रिय में तीर्यंच में आने पर भी होगा, इसलिए यदि कोई कहे कि वहां उत्कृष्ट स्वामित्व देना योग्य है, सो यह बात भी नहीं है, क्योंकि उसके बिना उपपाद योग के निमित्त से प्राप्त होने वाले द्रव्य से गुणित कर्मांशिक के उदय को प्राप्त हुआ गोपुच्छा का द्रव्य बहुत पाया जाता है। अभी यहां से वो जाएगा संगी पंचेंद्रिय तीर्यंच में, तो वहां योग छोट कम होगा, उपपाद योग होगा, यहाँ तो परिणाम का मैक्सिमम योग लिया है, परिणाम योग में से मैक्सिमम योग यहाँ हमने दिया था, और वहाँ उपपाद योग तो एकेंद्रिय के उस लाइन में आता है, बहुत बहुत ही फर्क पड़ेगा। तो वहाँ जो समय प्रबद्ध ग्रहण करेगा वो इतना छोटा होगा, परंतु वहाँ जो उदय में आकर खिरने वाला जो एक निषेक है उसकी संख्या बहुत होगी, वहां जो ग्रहण होगा उससे खिरने वाला बहुत बड़ा होगा। फिर इसको पढ़ते देखो, पेज नंबर 109। यहाँ पूछा था कि नारके के अंतिम भव में ही क्यों कह रहे हैं, तो हमने देखा था वो जीव कौन सा लिया था, वो पृथ्वी का एक में जो शुरू किया था, तो पृथ्वी का एक में कर्म स्थिति माइनस 2000 सागर इतना उसने काल बिताया था, तो उस पृथ्वी का एक के पहले भव में जो उसने बांधे थे वो परमाणु अभी तक विद्यमान है, क्योंकि वो कर्म स्थिति प्रमाण रहते हैं। कोई कहेगा नेक्स्ट समय में उसको और कर्म बंधा हो ना, तो कहते वो जो खिरने वाला जो निषेक है उसकी संख्या यहाँ जो, क्योंकि नेक्स्ट समय में जो बंधेगे तो उपपाद योग से बंधेगे, और यहाँ परिणाम योग में से मैक्सिमम वाला योग यहाँ लिया था, तो वो तो कितना असंख्यात असंख्यात गुणाहीन वाला है, तो वहां जो ग्रहण किए गए परमाणु से निकलने वाले परमाणु असंख्यात गुणे हो जाएंगे। तो कहते हैं, फिर से पढ़ती हूँ इसको, यहाँ कोई कहे कि उत्कृष्ट स्वामी तो वहां देना योग्य है, परंतु वहां क्या होता है, उपपाद योग के निमित्त से प्राप्त होने वाले द्रव्य से गुणित कर्मांशिक के उदय को प्राप्त हुआ गोपुच्छा, गोपुच्छा ने निषेक, उदय रूप जो निषेक सत्ता का निषेक, वो द्रव्य बहुत पाया जाता है। फिर शंका, आयु बंध के अभिमुख हुए जीव के अंतिम समय में उत्कृष्ट स्वामित्व क्यों नहीं दिया जाता, यानी अभी आयु बंध होना है नेक्स्ट समय में, आयु बंध के अभिमुख है ना, आयु बंध के सन्मुख, अभी आयु बंध में तो योग जगह नहीं हो जाएगा, परंतु उसके एक समय पहले की बात है, वहां उसका उत्कृष्ट स्वामित्व कहो ना, फिर वो जगन्य योग से कम परमाणु ले लेंगे और फिर ज्यादा छोड़ेंगे, वो क्यों छोड़ना चाहते हैं, ये कह रहे वहां क्यों नहीं दिया जाता। उसका समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि एक तो आयु बंध के काल में भी तात्कालिक यानी उस समय ज्ञानावरण के बंध से, यानी वहां जो ज्ञानावरण का बंध हो रहा है, ज्ञानावरण का बंधक कौन, जघन्य योग से हो रहा है, और ज्ञानावरण में 1/8 जा रहा है। हाँ, उपपाद में सबसे जघन्य योग, इसलिए वो ग्रहण कम हो रहा है। पर आयु का जो ग्रहण आप कहेंगे, आयु में भी जब आयु का बंध है और आयु का बंध जघन्य योग से बांध रहा था, तब भी ज्ञानावरण का जो ग्रहण हो रहा है वो कम होगा। तो कहते उससे भी क्या कहते हैं, यानी आयु बंध के पूर्व के समय की बात की, परंतु आयु के बंध के काल में भी ज्ञानावरण के बंध से गुणित कर्मांशिक के उदय को प्राप्त हुई गोपुच्छा स्तोक पाई जाती है। क्योंकि वो सारे कंडीशन हमने लगाए थे, वो तो संकलेश होता है वगैरह वगैरह, यानी ऊपर के निषेकों में परमाणु अधिक है, नीचे फिरने वाले में कम है। यानी आयु बंध के काल में भले वो 1/8 उसमें चला जाता है, फिर भी जो ग्रहण होता है उससे खिरने वाला गोपुच्छा छोटा है, खिरने वाला
ज्यादा है।
फिर से ज्ञानावरण के बंध से गुणित कर्मांशिक के उदय को प्राप्त हुई गोपुच्छा स्तोक पाई जाती है।
तो कम जरूर बैठा है,
कम है, वही तो है ना।
इसे कैसे बताया, क्योंकि आयु बंध के समय में 8 से,
फिर भी यहाँ जो वो उल्टा विन्यास हुआ है ना निषेक में, ऊपर ज्यादा परमाणु है, इसलिए यहाँ कम खिरते हैं। ऐसा मत समझना कि बहुत खिर गए इसलिए आयु बंध के पूर्व में इसको घटित करो, तो कहते ऐसा नहीं हो रहा है। वो तो नेक्स्ट बहु की बात, वो प्रश्न अलग था। वो तो था कि यहाँ क्यों लिया, नेक्स्ट बहु में क्यों नहीं लिया। अब दूसरा प्रश्न कि सातवें नरक का जो नारकी है वो आयु बंध कर रहा था, उसके पूर्व समय में क्यों नहीं घटित कर रहे हैं। तो कहते पूर्व समय में भी खिरने वाला तो वो कम है ही है, आयु बंध के काल में भी वो कम है, ये कहना
चाहता। उत्कृष्ट गुणित कर्मांशिक जब भी ज्यादा से ज्यादा परमाणु ग्रहण होते सत्ता में होते, वही समय आठों कर्मों का ज्यादा से ज्यादा ग्रहण होगा, अरे सत्ता में पड़ा होगा
अपनी अपनी योग्यता से। अभी आयु कर्म को तो नहीं कह सकते हम, आयु कर्म की बात अलग होगी, वो आएंगे ना अभी, हम अलग एक एक कर्म की बात देखेंगे। उसकी जो कर्म स्थिति प्रमाण घुमाना है वो उसकी अपनी अपनी कर्म स्थिति लेना है। मिथ्यात्व की 70 कोड़ा कोड़ी सागर के उसमें से 2000 सागर माइनस करके उसको घुमाना है, इस तरह से उस सबके लिए यही कंडीशन होगी। देखो ये पेज नंबर 110 पर आ गए हैं, यानी ये गुणित कर्मांशिक जीव का वर्णन चल रहा था और अभी हम अंतिम स्टेप पर आ गए, उसके यहाँ मैक्सिमम द्रव्य पाया जाता है। यहाँ तक समझ में आई बात, फिर से पढ़ती पहले लाइन से। तात्कालिक यानी उस समय आयु बंध के समय में ज्ञानावरण के बंध से, वहां जो एक समय प्रबद्ध प्रमाण बंध हो रहा है उससे गुणित कर्मांशिक के उदय को प्राप्त हुई गोपुच्छा स्तोक पाई जाती। उदय में आने वाला जो निषेक है, हमेशा क्या होता है, जितना ग्रहण होता है उतना ही करीबन एक समय प्रबद्ध छूटता भी है, परंतु यहाँ क्या कंडीशन हो रही है, उसके जो संकलेश वगैरह वगैरह के कारण ऊपर के निषेकों में द्रव्य उत्कर्षण ज्यादा हो रहा है, इसलिए नीचे के उदय में आने वाले गोपुच्छा में द्रव्य कम है, इसलिए यहाँ उसको ग्रहण नहीं करना है। और दूसरी पॉइंट, आयु बंध के काल में संचित हुए द्रव्य से आगे बहुत द्रव्य का संचय देखा जाता है, क्योंकि सातवें नरक में आयु का बंध कब होता है, एटलीस्ट अंतर्मूर्त पहले तो होगा ही होगा, आयु बंध होने के पश्चात अंतर्मूर्त काल तक तो मिनिमम तो उतना रहेगा, हो सकता है कि 6 महीने पहले भी आयु का बंध हुआ हो, तो उसके बाद जो संचय होने वाला द्रव्य वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि उसमें बहुत बार उसको उत्कृष्ट योग में रख सकते हैं, मैक्सिमम संकलेश में रख सकते हैं। तो आयु बंध का जो अंतर्मूर्त काल है उसमें जितना उसमें लॉस हुआ है उसके आगे उसमें जो ज्यादा संचय होने वाला है, इसलिए आयु बंध के पूर्व में उसको नहीं घटित किया, नरक के अंतिम समय में उसको घटित कर दिया। इन्हें दो कारण बताए उन्होंने, इसलिए आयु बंध के अभिमुख यानी सन्मुख, यानी आयु बंध के पूर्व समय की बात है, उस जीव के अंतिम समय में उत्कृष्ट स्वामित्व नहीं दिया गया। ये समझ में आई बात। अब आगे यानी अभी तक वो गुणित कर्मांशिक का जीव कौन सा वाला है जीव, वो नरक के अंतिम समय में उसके लिए जो सारी कंडीशंस अभी तक हम बहुत बार देख के आए वो सब घटित हुए, अब वहां कितना कितना क्या क्या पाया जाता है उसकी बात अभी करेंगे। कर्म स्थिति के प्रथम समय में बंधा हुआ द्रव्य, अभी ज्ञानावरण की बात है तो यहाँ 30 कोड़ा कोड़ी सागर पहले जो बंधा था वो द्रव्य, क्योंकि उसका ये अभी अंतिम समय है। 30 कोड़ाकोड़ी सागर पहले जो बंधा है उसका ये अंतिम समय, वहां जो कोई समय प्रबद्ध बंधा हुआ होगा उसमें से एक निषेक यहाँ पड़ा है, हो सकता है ना, तो उसमें वो द्रव्य भी यहाँ पड़ा है। तो कर्म स्थिति के प्रथम समय में बंधा हुआ द्रव्य उदय स्थिति में ही पाया जाता है, क्योंकि वो निषेक नीचे आते 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 भी उदय के सन्मुख है, उसके साथ अन्य भी समय में बंधे हुए कुछ परमाणु होंगे, परंतु वो पर्टिकुलर निषेक अभी उदय में आया हुआ है, क्योंकि उसकी शक्ति स्थिति एक समय शेष रहती है, क्योंकि अभी वो ये उसका अंतिम समय है स्थिति वाला, उसके बाद वो उस समय बंधे हुए कोई परमाणु इसके बाद नहीं रहने वाले। कर्म स्थिति के द्वितीय समय में संचित हुआ द्रव्य उदयादि दो स्थितियों में पाया जाता है, यानी जो एक समय बाद जो बंधा था उसके दो निषेक बाकी है, एक उदय रूप और एक उसके पूर्व का, समझ में आते हैं ना, अंतिम दो निषेक उसके बाकी है, क्योंकि उसकी शक्ति स्थिति दो समय शेष रहती है। अभी इसका अर्थ समझ में आता है कि नहीं, बस इतना हमको देखना है। इस प्रकार सब समय प्रबद्धों के अवस्थान की योग्य स्थितियां कहनी चाहिए, यानी 30 कोड़ाकोड़ी सागर के जितने समय हैं, उन प्रत्येक समय में जो जो एक एक समय प्रबद्ध बंधा हुआ था, जो 30 कोड़ाकोड़ी उसका एक निषेक बाकी, किसी के दो निषेक बाकी, किसी के तीन निषेक बाकी, किसी के चार निषेक बाकी, अभी अंतिम समय में बंधा है उसका पूरा है, जितने जो उसने बंधे है वो सारे बाकी है, क्योंकि उत्कृष्ट संकलेश वाला है तो 30 कोड़ाकोड़ी सागर यहाँ पर भी उसने बांधा है, तो उसका पूरा लॉट यहाँ बाकी है। समझ में आती बात? और यह नियम भी नहीं है, नियम भी नहीं है कहें कि ये जरूरी भी नहीं है कि पूरा का पूरा है, वो उसका निषेक का एक ही परमाणु बाकी हो, ये भी बन सकता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे अपकर्षण उत्कर्षण वगैरह होते रहते हैं ना, इसलिए कहते यह नियम भी नहीं है, क्योंकि पल्लोपम के असंख्यात वे भाग प्रमाण समय प्रबद्धों की अक्रम से गुणित घोलमान आदि अवस्थाओं के होने पर निर्जरा पाई जाती है। क्या कहते हैं, कितने समय प्रबद्ध, तो असंख्यात समय प्रबद्ध ऐसे होते हैं कि गुणित घोलमान का अर्थ क्या होता है, ये तो गुणित कर्माओं सीख लिया, गुणित कर्मांशिक के तरफ के चार शब्द आते हैं, एक क्षपित कर्मांशिक मिनिमम परमाणु वाला जीव, एक गुणित कर्मांशिक, अभी क्षपित के ओर वाले है वो क्षपित घोलमान, और गुणित के बाजू में है वो गुणित घोलमान, यानी उसको पूरा गुणित कर्मांशिक नहीं पर कभी उसने अधिक खिपाए भी है, ऐसा भी जीव उसमें ले सकते हैं। तो उसके कितने समय प्रबद्ध बीच में उसके कुछ अपकर्षण आदि के कारण वो निकल भी गया, ऐसा हो सकता है, इसलिए क्या कहते हैं, वो नियम नहीं है कि वो प्रत्येक निषेक होगा ही होगा, परंतु हम ये गुणित कर्मांशिक की बात कर रहे हैं, इसलिए उसको हमने है ऐसा गृहित धर के ये बात कर दी। इसलिए यह निष्कर्ष निकला कि कर्म स्थिति का प्रथम समय प्रबद्ध गुणित कर्मांशिक जीव के अंतिम समय में उत्कर्षण के अयोग्य है। ये बात बता रहे हैं, जो 30 कोड़ाकोड़ी सागर पहले बंधा था वो निषेक अभी भी पड़ा है, वो अंतिम निषेक, उस समय का अंतिम निषेक अभी उदय में आया हुआ है, क्या उसका उत्कर्षण हो सकता है?
नहीं,
क्योंकि वो शक्ति स्थिति का अंतिम समय है उसका, उसका उदर उत्कर्षण के अयोग्य है। द्वितीय समय प्रबद्ध भी वो भो नहीं भी उत्कर्षण के अयोग्य है, क्योंकि हमने देखा था जो उदयावली में जो आवली प्रमाण जो निषेक है उसका तो उत्कर्षण होता ही नहीं है, और बाकी भी जो निषेक है अभी हमने देखा ना, ये सत्ता वाले निषेक पड़े यहाँ पर और नया समय प्रबद्ध बनता है, और ये उत्कृष्ट संकलेश से अंतिम समय में बंधा है, यानी यहाँ पर भी 30 कोड़ाकोड़ी सागर का बंध हुआ है, तो यहाँ 3000 वर्ष की तो आबादा है, 3000 वर्ष की आबादा है, तो यहाँ ये उदयावली वाले तो ऊपर जाएंगे नहीं जाएंगे, उदयावली के ऊपर का निषेक तो ऊपर जा सकता है ना, नहीं वो भी कब बांधा था, 30 कोड़ाकोड़ी सागर माइनस आवली, तो आवली का ही ऊपर का निषेक है, तो ये तो क्योंकि वो भी उसकी अपनी स्थिति कितनी रही है आवली प्रमाण, मान लेते हैं ये उदय के समय से 10 वर्ष प्रमाण कोई निषेक पड़ा है, उसकी उतनी ही शक्ति स्थिति पड़ी है। तो अभी वो 10 वर्ष वाला या यहाँ के नीचे के कहाँ तक जा सकते हैं? 10 वर्ष तक। पर यहाँ तो आबादा है, यहाँ कोई निषेक है ही नहीं है, क्योंकि बंद की कंडीशन होती है। तो जिनकी स्थिति 3000 वर्ष की है, उसका उत्कर्षण कैसे होगा? समझ में आती है बात? क्योंकि वो अपने अपने समय प्रबुद्ध का अंतिम निषेक है। अभी उसके लिए अतिस्थापन छोड़कर ऊपर जाने के लिए यहाँ तो निषेक ही नहीं है। ये बात अब बताएंगे, देखो फिर से। जो बाद में कोई बंध है और उसके भी उसकी उतनी अतिस्थापन भी छूटनी चाहिए और उसके ऊपर जाना चाहिए। नहीं, पर यहाँ उत्कृष्ट संकलेश वाला जीव है ना, अंतिम समय में सर्वोत्कृष्ट योग और संकलेश वाला जीव लिया है, तो उसकी आबादा 3000 वर्ष की होगी। नारकी जो लिया है अंतिम समय में, वो संकलेश वाला ही जीव है।
तो यहाँ पे इसे बता रहे हैं कि कर्म स्थिति के शुरुआत में जो बांधा था उसके पश्चात जो 3000 वर्ष तक जो भी समय प्रबंध बांधा था
वो अपने 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 समय में उदय में आ रहे हैं।
उसका उत्कर्षण नहीं होता,
उसका उत्कर्षण, क्योंकि वो वहाँ आबादा ही उतनी है, उत्कर्षण होने के लिए वहाँ निषेक भी तो चाहिए ना, बंधने वाला निषेक चाहिए, और बंधने वाला निषेक है नहीं है। कम अधिक भी अगर हम कहते 30 कोड़ा कोड़ी सागर नहीं बंधे है, तो थोड़ा 1000 वर्ष कम बंधे है, फिर भी उसको
उत्कर्षण नहीं,
उसका ऐसा नहीं होगा ना, क्योंकि वहाँ कोई निषेक ही नहीं पड़े है। अभी यहाँ इसको पढ़ेंगे, देखो यहाँ से शक्ति स्थिति तो उसकी कितनी है, मान लेते ना 3000 वर्ष की शक्ति स्थिति पड़ी है पुराने वाले ही। अभी यहाँ का कोई जो है ना, 3000 वर्ष का छोड़ो, 2000 वर्ष उसका अंतिम निषेक है, तो वो तो ऊपर चढ़ेंगे कि नहीं चढ़ेंगे? वो 2000 वर्ष वाला वो तो अंतिम है, वो ऊपर नहीं चढ़ सकता। इस निषेकों में जो बाद में बंधे हुए, जो ये अंतिम वाली है, कोई पूर्व में बंधे हुए ऐसा पड़े हो सकते हैं ना यहाँ पर बंधे हुए? क्योंकि आउली काल के बाद कोई भी अपकर्षण उत्कर्षण होकर कोई भी परमाणु आ सकते हैं, उसकी बात नहीं है, ये पूरे निषेक की बात है। यहाँ कोई परमाणु ऐसे भी हो गए ना कि 10 वर्ष पहले बंधे हैं, तो उसकी शक्ति भरपूर पड़ी है, तो वो जाएंगे, पर हम उस निषेक की बात कर रहे हैं। हाँ, शक्ति स्थिति नहीं है, और शक्ति स्थिति मान लेते ना, 3000 वाला कोई यहाँ पर है, वो तो ऊपर जा सकता है, या यहाँ कोई 3500 वर्ष वाला है, वो तो ऊपर जा सकता है, तो वो जा सकता है, परंतु वो भी विशिष्ट अतिस्थापना छोड़कर ऊपर जा सकता है।
तो यहाँ पे जो आगे का सेंटेंस है ना, उसका अर्थ नहीं भाषित होता है, और ये नियम भी नहीं है, क्योंकि पल्योपम के असंख्यक बात समझ होती।
देखो ये बात यहाँ बता रहे हैं, गुणित कर्मांशिक के लिए यहाँ नियम बता रहे हैं, परंतु ये नियम सभी जीवों में अप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि कर्म स्थिति प्रमाण उसके सभी निषेक रहेंगे ही रहेंगे, ये कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उत्कर्षण अपकर्षण के कारण उसमें से कुछ बीच वाले निषेक, यानी बीच में अंतर भी पड़ता है, कुछ उसमें परमाणु नहीं भी हो, ये हो सकता है। हमने ये भी देखा था अंतिम समय वाला निषेक में एक ही परमाणु बाकी, ऐसा भी हो सकता है। अभी पूरा पढ़ेंगे तो और ख्याल में आएगा, देखो देखो। यानी इन्होंने पहले नियम क्या बताया गुणित के लिए, गुणित कर्मांशिक के लिए, अंतिम निषेक के भी कुछ परमाणु वहां बाकी है। अब कहते ऐसा नियम नहीं है, क्योंकि जो गुणित घोलमान हो गए या क्षपित में तो और कहेंगे, उसके तो कितने बार स्थिति कांड घात भी हुए थे, तो उसके इतनी स्थिति वाले कोई निषेक नहीं बचेंगे, ये कहना चाहते हाँ। अब जब पेज नंबर अपना 110 चल रहा है, फिर मैं इसको पढ़ रही हूँ। देखो नीचे से 1, 2, 3, 4, 5 छठी लाइन, द्वितीय समय प्रबद्ध भी उत्कर्षण के अयोग्य है इस प्रकार। अभी कितने ऐसे निषेक है कि जो उत्कर्षण के अयोग्य है, इस प्रकार कर्म स्थिति के प्रथम समय से लेकर 3000 वर्ष तक आगे जाकर बंधा हुआ समय प्रबद्ध भी उत्कर्षण के अयोग्य है, क्योंकि वो 3000 वाला जो भी है वो भी उत्कर्षण होकर कहाँ जाएगा, वो तो 3000 वर्ष के उसमें वहां तो निषेक ही नहीं है, 3000 वर्ष और एक समय में निषेक पड़ा है और उसकी शक्ति स्थिति 3000 वर्ष वाली है, तो 3000 वर्ष और एक समय में बंधा हुआ वो तो ऊपर चला जाएगा, वो तो उसके लेवल का एक निषेक है, परंतु अति स्थापना छोड़कर ही ऊपर जा सकता है, तो वो भी ऊपर नहीं जाएगा। अर्थ समझ में आ रहे हैं ना इसका?
मैंने जो यहाँ पे पूछा, अक्रम से गुणित गोलमाल आदि अवस्थाओं के होने पर निर्जरा पाई जाती है, तो यहाँ पे इसे समझना पल्योपम के असख्याक्रमण जो निषेक है,
समय प्रबद्ध निषेक अलग बात है और समय प्रबद्ध अलग बात है, एक समय प्रबद्ध की अनेक निषेकों में उसकी रचना हो जाती है। जब गुणित घोलमान की बात आएगी तो ये आपका प्रश्न आप रखो जरा, उसका समाधान हो जाएगा। ये सब बातें हमने जयधोला में भी पढ़ी थी, आपको याद होगा तो उसमें हमने प्रदेश विभक्ति में ये सभी बातें आई थी। मुझे भी अभी वहाँ की बात याद नहीं है, परंतु ये कौन से जीवों में कितने क्या रह सकते हैं निषेक उसकी बात है। अभी तो हम गुणित कर्मांशिक की बात समझेंगे, वो गुणित घोलमान की बात अभी गौण रखो अभी, आपको समझने के लिए अभी जो बता रहे उसको समझने की कोशिश करना। हमने क्या देखा, जो कर्म स्थिति के पहले समय में बंधा हुआ अभी अंतिम समय में, उसका वर्तमान एक निषेक ही बाकी है जो उदय रूप है, उसका तो उत्कर्षण हो नहीं सकता। द्वितीय अभी वहां से द्वितीय समय में तृतीय समय, तो कहते 3000 वर्ष तक के जो है उसका भी उत्कर्षण नहीं हो सकता, क्योंकि 3000 वर्ष कर्म स्थिति शुरुआत होने के बाद था, तो उसके तो बंधने वाले तो 3000 के आबादा छोड़कर ऊपर निषेक रचना है, और उसकी अपनी शक्ति स्थिति 3000 वर्ष की है, तो उसका भी उत्कर्षण नहीं हो सकता। ये समझ में आई बात? तो कहते 3000 वर्ष तक आगे जाकर बंधा हुआ समय प्रबद्ध भी उत्कर्षण के अयोग्य है, क्योंकि इनकी अति स्थापना और निक्षेप नहीं पाया जाता। अति स्थापना यानी उसके ऊपर के कुछ निषेकों को छोड़ना, और निक्षेप यानी उसके ऊपर देना, तो इनके तो इतनी शक्ति स्थिति नहीं, तो उसके ना अति स्थापना है ना निक्षेप है। किंतु एक समय अधिक 3000 वर्ष आगे जाकर बंधा हुआ समय प्रबद्ध उत्कर्षण के अयोग्य नहीं है, क्योंकि 3000 वर्ष प्रमाण आबाधा को अति स्थापित करके आगे की एक स्थिति में इसका निक्षेप पाया जाता है, क्योंकि एक स्थिति में उसका चला जाएगा। दो समय अधिक 3000 वर्ष आगे जाकर बंधा हुआ समय प्रबद्ध भी उत्कर्षण के अयोग्य नहीं है, क्योंकि 3000 वर्ष को अति स्थापित करके आगे की दो स्थितियों में इसका निक्षेप देखा जाता है। यानी ये 3000 वर्ष पहले बाद में बंधे हुए कोई परमाणु यहाँ पर है तो वहाँ उसका तो उत्कर्षण होकर यहाँ जा सकते हैं, परंतु उसके समान निषेक में से उसमें नहीं जाएंगे, परंतु जो परमाणु नीचे अपकर्षित होकर नीचे आए हैं वो उनकी अभी इतनी शक्ति स्थिति तो वहां तक चले जाएंगे। इस प्रकार अति स्थापना को अवस्थित करके, यानी अति स्थापना ने उसके ऊपर इतने निषेक छोड़कर ऊपर द्रव्य दिया जाता है, वो अति स्थापना कहते हैं। तीन समय आदि के क्रम से कर्म स्थिति के भीतर बांधकर एक समय अधिक बंधावली को गलाकर स्थित हुए, क्या कहते हैं, जब बंध होता है उसके बाद एक आवली तक उसमें कोई उत्कर्षण अपकर्षण कुछ नहीं होता है, इसलिए बंधावली और एक समय व्यतीत होने के बाद ऐसे जो समय प्रबद्ध है स्थित हुए समय प्रबद्ध के प्राप्त होने तक निक्षेप ही बढ़ाना चाहिए, क्योंकि उसके निक्षेप बढ़ाना चाहिए ने अधिक अधिक निषेकों में वो द्रव्य दिया जाएगा, ख्याल में आती है बात? किंतु अगलित बंधावलियों का, अगलित बंधावली का अर्थ होता है बंध होने के बाद एक आवली प्रमाण काल में जो बंधे है समय प्रबद्ध, उसका कुछ नहीं हो रहा है, न तो उत्कर्षण ही होता है न अपकर्षण है, यानी बंध होने के बाद एक आवली काल तक उन समय प्रबद्धों में उत्कर्षण अपकर्षण कुछ नहीं होता है। अब हम नारकी के अंतिम भव की बात, अंतिम समय की बात कर रहे हैं, उसके जस्ट एक आवली पहले जो बंधे है उसका अपकर्षण उत्कर्षण कुछ नहीं हो रहा है, वो समय प्रबद्ध जैसा का वैसा पड़ा है। इस तरह जिस प्रकार कर्म स्थिति के अंतिम समय में ठहरा कर उत्कर्षण का विचार किया गया है, उसी प्रकार कर्म स्थिति के द्विचरण समय से लेकर प्रथम समय तक के समयों को विवक्षित करके उत्कर्षण विधि का कथन करना चाहिए। क्या कहना चाहते हैं? पहले समय में बंधा हुआ का एक निषेक बाकी है, इस तरह से हमने बढ़ाते बढ़ाते वो कर्म स्थिति के अंतिम समय तक लाया। अब कहते उल्टे क्रम से भी कह सकते हैं, या अभी समय प्रबद्ध जो बांधा है उसके पूरे निषेक पड़े हैं, पूरा समय प्रबद्ध पड़ा है। एक समय पूर्व बांधा वो भी पूरा समय प्रबद्ध है, उसके एक समय पहले उसका भी, क्योंकि आवली काल प्रमाण है उसके सारे पूरा का पूरा समय प्रबद्ध पड़ना है, उसके एक समय में पहले बांधा हुआ तो उसका उत्कर्षण अपकर्षण हो सकता है, तो कहाँ कहाँ हो सकता है उसकी सब विधि बताना है, ये कहना चाहते हैं। हमने वहां से शुरू किया था बादर एक केंद्रीय की बात, अभी उल्टे क्रम से जाना, वही की वही बात होगी। इस प्रकार इस विधि से संचित हुए उत्कृष्ट ज्ञानावरण के द्रव्य के उपसंहार का कथन करते हैं। यानी अभी हम बहुत लंबी चौड़ी बातें सब समझाते समझाते अभी आया कि ऐसे जीव को ज्ञानावरण का द्रव्य का उत्कृष्ट संचय पाया जाता है। संचय ने उसकी जो पूरे इकट्ठे हुए है उसकी परमाणु की संख्या मैक्सिमम है, द्रव्य का संचय ने परमाणु की संख्या यहाँ पर उत्कृष्ट है, मैक्सिमम है। यहाँ कहते उपसंहार किसे कहते हैं? समाधान, कर्म स्थिति के प्रथम समय से लेकर अंतिम समय तक के इन समयों में बांधे गए सब समय प्रबद्धों के अथवा प्रत्येक के प्रमाण की परीक्षा का नाम उपसंहार है। यानी कब बांधा था, उसका कौन कौन से कितना द्रव्य बाकी होगा, ये इसकी परीक्षा करना है, उसकी उसकी बात हमको विचार करना है, सोचना है, उसको यहाँ उपसंहार कहें। इसके तीन अनुयोग द्वार है। अभी ज्ञानावरण के उत्कृष्ट द्रव्य का जो उपसंहार कर रहे हैं कि कहाँ बंधे हुए का कितना द्रव्य बाकी है, उसमें तीन अनुयोग द्वार बता रहे हैं। एक है संचयानुगम, एक है भागहार प्रमाणानुगम और समय प्रबद्ध प्रमाणानुगम। अब उसमें संचयानुगम में भी तीन अनुयोग द्वार है। यानी यहाँ जो संचय हुआ है उत्कृष्ट संचय, तो उसमें प्ररूपणा करेंगे, प्रमाण और अल्पबहुत्व। प्ररूपणा बस है इतना कह देते, उसको प्ररूपणा कहते हैं। तो उसमें से संचय में से प्ररूपणे की बात है, तो प्ररूपणा की अपेक्षा कर्म स्थिति के प्रथम समय में संचित द्रव्य है। यानी पहले समय में बांधा हुआ उसमें से एक निषेक पड़ा है, तो प्रथम समय में संचित हुआ द्रव्य है, यानी उसकी उपस्थिति है। द्वितीय समय में संचित द्रव्य भी है, तृतीय समय में संचित द्रव्य भी है। इस प्रकार कर्म स्थिति के अंतिम समय तक ले जाना चाहिए। ज्ञानावरण की उत्कृष्ट स्थिति 30 कोड़ाकोड़ी सागर है, तो 30 कोड़ाकोड़ी सागर के प्रत्येक समय में बंधे हुए समय प्रबद्ध का कोई ना कोई अंश वहां पड़ा है, यानी उस समय जो संचित हुआ द्रव्य वो यहाँ पड़ा है, ये इतना कहना चाहते हैं। अने है ये बताया, ये प्ररूपणा समाप्त हो गई। इस प्रकार प्ररूपणा समाप्त हुई, यानी वो संचित की चल रही ना बात, संचयानुगम की बात चल रही है, तो उसकी प्ररूपणा हो गई। अभी संचयानुगम में प्रमाण बता रहे हैं। जो समय प्रबद्ध कर्म स्थिति के प्रथम समय में बंधता है उसके नारक भव के अंतिम समय में अनंत परमाणु है। क्या कहा? क्योंकि एक समय प्रबद्ध की रचना जो होती है, हम देखते हैं ना, एक समय प्रबद्ध जो वहां बंधा था वो भले बादर एक इंद्रियों ने पर्याप्त ने सागर प्रमाण जो कोई जितने यथा योग्य बंधा है सागर का 3/7 बांधा था, परंतु जब वो पंचेंद्रिय में आया था या त्रसों में आया था तो उत्कर्षण होते 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 उसका एक निषेक पड़ा है वहां पर, तो प्रत्येक निषेक में तो अनंत परमाणु होते हैं, तो वहां उसका प्रमाण अनंत परमाणु की बात है यहाँ पर, और ये गुणित कर्मांशिक लिया इसलिए यहाँ अनंत परमाणु होते कह दिया। इसी प्रकार सर्वत्र कहना चाहिए प्रमाण प्ररूपना समाप्त हुई। यानी देखो 70 कोड़ाकोड़ी सागर के जितने समय है प्रत्येक समय में जो बांधा है उसके अनंत परमाणु पड़े, वो अनंत में वेरिएशन होगी क्योंकि वो अनंत वाला एक निषेक है, किसी के 2 निषेक है, किसी के 3 निषेक है, किसी के 4 निषेक है, तो हरेक समय में जो संचित द्रव्य वो अनंत है। अब अल्पभूतव, अभी अल्पभूतव देखने के लिए जो ऊपर का टेबल देखो जरा, कर्म स्थिति के प्रथम समय में जो बंधा था उसका अंतिम निषेक उदय रूप है, वो अंतिम निषेक है नौ परमाणुओं का। ऊपर का टेबल देखो, राइट साइड ऊपर। एक समय प्रबुद्ध की अगर रचना देखते हैं, एक समय प्रबुद्ध की रचना है तो हम देखते हैं ना ऊपर से लेके कि 9 10 ऐसे 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 करते 16 तक, फिर वो गुणहानि वगैरह कहते हैं ना, तो फिर उसमें वो चय के द्वारा उसके बाद बताते हैं, तो ऐसे करते करते 512 से लेकर 9 परमाणु तक की निषेक रचना होती है। यानी किसी का एक निषेक बाकी है तो उसका द्रव्य कितना है, 9 है। किसी के 9 और 10 दो निषेक बाकी है तो उसका द्रव्य कितना है, 19 है। 9 10 11 तो ये 19 और 11 उसमें 30 परमाणु है। ये बात यहाँ लिखे देखो ऊपर राइट साइड का पहला कॉलम, ऊपर से नीचे तक पढ़ो, देखो 9 जिसके दो निषेक है उसका 19, यानी 9 और 10 19 होते हैं। 19 और 10 अभी उसमें 11 मिला ना, 19 में 11 मिलाओ तो 30 हो जाते हैं, 30 में 12 मिलाओ तो 42 होते हैं, यानी उनके चार निषेकों की टोटल बता रहे। 42 में 13 मिलाओ तो 55 होते हैं, उसमें 14 मिलाओ तो 69, उसमें 15 मिला तो 84, उसमें 16 मिला तो 100। ये मैंने पूरी एक गुणहानि प्रमाण उसके निषेक बाकी है। अभी वहां 9 10 11 12 ऐसी बातें थी, अभी दो दो से बढ़ेंगे। अभी तक हमने 16 बढ़ाए थे, अभी उसमें 18 बढ़ाओ तो 118। देखो राइट से दूसरा कॉलम ऊपर से नीचे देखना, 118 होते हैं। अभी उसमें 20 मिलाओ तो 138 हो जाएगी, उसमें 22 मिलाओ 160 हो जाएगी, उसमें 24 मिलाओ, यानी दो दो से बढ़ते हुए उसमें मिलाते रहना। इस तरह से ये पूरा ही यहाँ तक लेना। अभी राइट साइड का कॉलम देखो और सबसे नीचे आ जाओ, 6300 का अर्थ है कि पूरा समय प्रबद्ध जिसका है। हम मान लेते कि एक समय में 6300 परमाणु बनते हैं तो उसकी नीचे एक नजना 512 से लेकर 9 तक होती है, परंतु ये अलग अलग समयों में बंधे हुए, किसी का एक निषेक है, किसी के अंत के दो निषेक बाकी है, किसी के अंत के तीन निषेक है, तो इस तरह से उनकी हर एक समय में बंधे हुए द्रव्यों का संचय इस तरह होगा। अभी इसको आधार बना के आगे का हम पढ़ेंगे तो समझेंगे। देखो ये अल्पभूत तो देखा है ना, देखना है हमको। अभी उसमें आप नंबरिंग भी कर सकते हैं। एक नंबर पर कर्म स्थिति के प्रथम समय का संचय स्तोक है, यानी जो प्रथम समय में बंधा हुआ था उसका एक ही नौ संख्या वाला एक ही निषेक बाकी है तो सबसे कम है। नौ परमाणु है वहां पर, वो सबसे कम है। उससे अंतिम समय का संचय असंख्यात गुणा है। अंतिम समय का संचय ने 6300 वो असंख्यात गुणा है। गुणकार क्या है, गुणकार अंगुल का असंख्यात भाग है, इसका कारण आगे कहेंगे। वो गुणकार की बात छोड़ दो, वो तो उसकी चर्चा बाद में करेंगे। यानी 9 की अपेक्षा 6300 ये असंख्यात गुणा है। अब यहाँ पर हम देखेंगे 9 7 7 700 गुणा तो यहाँ पर ही हो गया है ना, वहां तो मूल में अनंत है, 9 भी अनंत है और वो भी अनंत है, वो असंख्यात गुणा हो जाता है। 3 पॉइंट पर अप्रथम अचरम, अप्रथम अचरम किसको कहेंगे,
अप्रथम और अचरम
जो 9 भी नहीं है और 6300 भी नहीं है, हाँ उसको छोड़कर बाकी सब की टोटल, उससे असंख्यात गुणा है। गुणकार क्या है, गुणकार कुछ कम डेढ़ गुणहानिया है, क्योंकि सत्ता में तो डेढ़ गुणहानि समय प्रबद्ध इतना होता है, इसका कारण भी आगे कहेंगे। चौथे पॉइंट पर अचरम समय संबंधी संचय उससे विशेष अधिक है। अचरम का अर्थ होता है जो चरम नहीं वो अचरम है। पहले क्या किया था, 9 लिया, 9 से 6300 कितने गुना है वो कहा, अभी 6300 से 9 को भी छोड़ो और 6300 को भी छोड़ो, बीच वाले सभी की टोटल असंख्यात गुना कह दी। अब जो बीच वाले सबसे है वो तो अचरम कहने से, पांचवे पॉइंट अचरम, अचरम का अर्थ होता क्या है, जो चरम नहीं वो अचरम, तो उसमें केवल 9 मिलाए थे, बीच वाले सभी में 9 मिलाए, नहीं समझे फिर से सेकंड लाम नहीं द्विचरम नहीं अचरम है जो अंतिम नहीं वो सारा अचरम जैसे उसको उत्कृष्ट कहो ना अनुत्कृष्ट में क्या कहते हैं जघन्य से लेकर सारा उत्कृष्ट के पूर्व तक सारा अनुत्कृष्ट कहलाता है अचरम क्या है 9 से लेकर 5788 तक जो है वो सारे की टोटल देखो देखो दो नंबर पर हमने 6300 लिया तीन नंबर पर अप्रथम अचरम मैंने 19 से लेकर 5788 तक सबकी टोटल ली थी अब जो चौथे नंबर पर अचरम है 9 से लेकर 5788 तक यानी वहां 1900 लेकर है तो अभी उसमें 9 मिला है थोड़ा अधिक हुआ है अभी पांचवे नंबर पर अप्रथम समय संबंधी संचय अप्रथम मैंने भी 9 मिलाए थे ना वो 9 को माइनस कर दो और 6300 मिला दो तो वो विशेष अधिक हो जाएगा और छठे नंबर पर कर्मस्थिति संबंधी संचय यानी सबको 9 को भी मिलाओ 6300 को भी मिलाओ सब 9 से लेकर 6300 तक सभी की टोटल वो कर्मस्थिति प्रमाण संचय बताया यानी प्रत्येक समय में बंधे हुए परमाणु का संचय बताया वो विशेष अधिक है और कर्म 7 नंबर पर कर्मस्थिति के सब द्रव्य की संदृष्टि यह है एक्चुअली उसको 7 नंबर नहीं देना है इस प्रकार संचय अनुगम समाप्त हुआ क्योंकि उस अल्प बहुतों में नहीं है वो संदृष्टि बताना था उसको 7 नंबर नहीं देना है ये समझ में आई बात अब आगे का 113 पेज पर आते हैं 111 पर हमने 3 अनुयोग द्वार देखे थे एक तो संचय अनुगम उसमें प्ररूपणा प्रमाण और अल्प बहुत्व हमने देख लिए थे अब दूसरा कौन सा है भागार प्रमाण भागार प्रमाण अनुगम वो अभी यहाँ बता रहे हैं ये भागार प्रमाण अनुगम का कथन करते हैं यथा कर्म स्थिति के प्रथम समय में संचित द्रव्य का भागार अंगुल के असंख्यातवे भाग प्रमाण है जो असंख्यात उत्सर्पिणी और अस्वर्पिणी के जितने समय है उतना है ये हमने देखा था अंगुल के असंख्यातवे भाग ये जो प्रमाण है वो कितना है तो एक उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी के समय कितने होते हैं तो कहते हैं कि 20 कोड़ाकोड़ी सागर है पूरा कल्पकाल 10 और 10 मिलकर 20 कोड़ाकोड़ी सागर उसके जितने समय है और ऐसे एक बार नहीं ऐसे असंख्यात तो वो जो प्रमाण है वो है अंगुल का असंख्यात भाग का प्रमाण तो कहते हैं कर्मस्थिति के प्रथम समय में संचित द्रव्य का भागहार वो कितना है तो अंगुल का असंख्यात भाग है तो ये शंका पूछ रहे हैं यह किस प्रमाण से जाना जाता है यह आपने कह दिया तो वो कैसे है समाधान कर्म स्थिति के प्रथम समय में बंधे हुए समय प्रबद्ध का सबसे उत्कृष्ट संचय वो संचय बराबर है लिखा है क्या सर्व संक्लिष्ट मिथ्या दृष्टि के द्वारा यानी जो मिथ्या दृष्टि बहुत संक्लेश से जो बांध रहा है 3000 वर्ष प्रमाण आबाधा करके आबाधा से हीन 30 कोड़ाकोड़ियों की प्रदेश रचना करते हुए चरम स्थिति में निषिक्त द्रव्य प्रमाण है ऐसा प्रावृत सूत्र में कहा गया है क्या कहना चाहते हैं अभी सर्व संक्लेश वाले मिथ्या दृष्टि जब बांधता है तो उसका सर्वोत्कृष्ट है नहीं उसकी प्रदेश विन्यास जो है वो उल्टा हो जाता है ऊपर उसका द्रव्य मैक्सिमम है फिर से इसको पढ़ते हैं हम कि कर्मस्थिति के प्रथम समय में बंधे हुए समय प्रबद्ध का सबसे उत्कृष्ट संचय किसको होगा सर्व संक्लिष्ट मिथ्या दृष्टि के द्वारा 3000 वर्ष प्रमाण आबाधा करके आबाधा से हीन 30 कोड़ाकोड़ियों की प्रदेश रचना करते हुए चरम स्थिति में निषिक्त द्रव्य प्रमाण है ऐसा प्रावृत सूत्र में कहा गया है यानी जब उसने निषिक्त ने डाला हुआ यानी जो कोई मिथ्या दृष्टि तीव्र संक्लेश वाला संगी पंचेंद्रिय होगा तो वो जब कर्म बांधता है, 30 कोड़ा कोड़ी की उसने स्थिति बांधी, तो 30 कोड़ा कोड़ी की स्थिति बांधी तो उसके प्रदेश रचना कैसी हुई, 3000 वर्ष की तो आबादा छूटी और ऊपर उसके निषेक रचना हुई, तो उसने इतने निषेकों में उसका रचना उसकी किया है। और उस चरम स्थिति में निषिक्त यानी इसमें जो द्रव्य उसका है वो मैक्सिमम है, यो कहना चाहते हैं। यथा अभी वो समझा रहे हैं कषाय प्रावृत में, ये कषाय प्रावृत ग्रंथ का नाम है, कषाय प्रावृत में स्थित्यंतिक नामक एक अर्थाधिकार है, स्थिति अंतिक अंतिम स्थिति स्थित्यंतिक, अभी उसके तीन अनुयोग द्वार है, समुत्कीर्तना जैसे हम यहाँ प्ररूपणा करते हैं वो समुत्कीर्तना, स्वामित्व और अल्पभूतव, उनमें से समुत्कीर्तना अधिकार में उत्कृष्ट स्थिति प्राप्त, निषेक स्थिति प्राप्त, अद्धानिषेक स्थिति प्राप्त और उदय स्थिति प्राप्त द्रव्य का निर्देश किया गया है। स्थित्यंतिक मैंने स्थिति यानी वो निषेक, अंतिम ऐसा मतलब स्थित्यंतिक यानी वो निषेक रचना है, तो कौन से निषेक में कितना द्रव्य होता है उसकी बात यहाँ बता रहे हैं। तो उसमें जो बात बताई है तीन अनुयोग द्वार में, तो उसमें वो होता है ऐसा कहते ना, समुत्कीर्तना में क्या बताया, उत्कृष्ट स्थिति प्राप्त, उत्कृष्ट स्थिति यानी जो अंतिम स्थिति होगी वो उत्कृष्ट स्थिति में कितना द्रव्य है, निषेक स्थिति प्राप्त उसका अर्थ बताएंगे अभी, अद्धानिषेक स्थिति प्राप्त और उदय स्थिति प्राप्त द्रव्य का निर्देश ने कथन किया है। उनमें जो समय प्रबद्ध कर्म स्थिति काल तक रहकर निर्जीर्ण होने वाला है, उसके उदय स्थिति को प्राप्त हुए पुद्गल स्कंधों की अग्र स्थिति प्राप्त संज्ञा है। क्या कहते हैं, जो समय प्रबद्ध यानी जो बंधा हुआ है कर्म स्थिति काल तक रहकर निर्जीर्ण होने वाला है, यानी वो समय प्रबद्ध वो 30 कोड़ा कोड़ी सागर तक उसके कुछ परमाणु रहेंगे और वो निर्जीर्ण होगा, यानी वो अग्र स्थिति यानी अंतिम जो निषेक है उसकी बात है, उसको कहेंगे अग्र स्थिति प्राप्त संज्ञा है। जो कर्म जिस स्थिति में निषिक्त है, निषिक्त ने डाला हुआ है यानी जो निषेक रचना जो हुई थी, तो जो कर्म ने जो परमाणु जिस निषेक में है वह अपकर्षण और करो और उत्कर्षण द्वारा अधस्तन ने नीचे की और उपरीम स्थिति को प्राप्त होकर फिर से अपकर्षण व उत्कर्षण द्वारा उसी स्थिति को प्राप्त होकर यथा निषिक्त परमाणुओं के साथ उदय में दिखता है वह निषेक स्थिति प्राप्त कहलाता है। यानी ऐसा भी होगा कि जो कर्म बंधा था, कोई मान लेते हैं ना कि 2000 सागर ऊपर जो अभी 3000 सागर है ना आबादा, मान लेते कि उसका निषेक एक 10000 वर्ष के ऊपर पड़ा है, 10000 वर्ष के ऊपर उसका वो निषेक पड़ा है, उसमें से परमाणु कभी उत्कर्षण हुए कभी अपकर्षण हुए, जब उदय में आने के योग्य हुए तो उस निषेक में जाकर ही उदय में आए, अपने पर्टिकुलर निषेक में जाकर उदय में आए, उसको कहेंगे निषेक प्राप्त, निषेक स्थिति प्राप्त कहलाता है। जो कर्म वो जी दिख रहा है जो करो, जो कर्म जिस स्थिति में निषिक्त होकर अपकर्षण व उत्कर्षण के बिना उसी स्थिति में उदय में दिखता है वह अद्धानिषेक स्थिति प्राप्त कहलाता है। यानी वो उसी निषेक में है, उसका उत्कर्षण हुआ नहीं अपकर्षण हुआ, अपने निषेक में पड़ा रहा और जब उदय में आना है तब उसका उदय हुआ अपने काल में, उसको अद्धानिषेक प्राप्त कहते हैं। निषेक स्थिति यानी उसी निषेक के साथ उदय में आया पर उसके पहले वो बीच में वो अपकर्षण उत्कर्षण करके अन्यत्र चला गया और फिर अंत में अपने निषेक में आकर उदय में आया, और ये उसने अपनी जगह नहीं छोड़ी वही रहा।
एक क्वेश्चन था, यहाँ पे जो पहली लाइन बताई है कर्म स्थिति के प्रथम समय में बंधे हुए, समय प्रबद्ध का सबसे उत्कृष्ट संचय, वो तो सबसे उत्कृष्ट संचय जो 30 कोड़ा कोड़ी साल पहले बंधा था वो प्रथम निषेक में है, उदय रूप हो जागोने जा रहा है, और उसका द्रव्य जो उत्कृष्ट संकलित स्थिति जीव बांधता है उसके अंतिम निषेक में जो द्रव्य उसके प्रमाण से कैसे बता
क्या 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 घोटाला कर रहे हैं?
नहीं ये देखिए,
कर्म स्थिति के प्रथम समय में बंधे हुए समय प्रबद्ध का
सबसे उत्कृष्ट संचय,
सबसे उत्कृष्ट संकलेश किसके होगा?
नहीं उत्कृष्ट संचय
वही तो बता रहे,
उत्कृष्ट संचय का भी है अभी वो
किसके होता है?
वो संचय हुआ द्रव्य पहले निषेध में पड़ा है क्योंकि उसकी शक्ति क्योंकि उसकी शक्ति स्थिति खत्म होने को आई है।
प्रथम का अंतिम
नहीं, प्रथम स्थिति में क्योंकि कर्म स्थिति के प्रथम समय में बंधे हुए वो अभी
उसकी या अंतिम स्थिति है?
हाँ उसकी अंतिम स्थिति है
जो अभी वर्तमान उदय रूप है।
हाँ वर्तमान उदय रूप है,
वर्तमान उदय रूप है परंतु वो बंदी कब थी? तीस कोड़ापोड़ी सागर पहले। हाँ
वो उत्कृष्ट संचय जो उदय में आ रहा है उसकी वो उसका प्रमाण कहाँ से बता रहे हैं? क्योंकि अभी जो सर्वसर्जित मिथ्या दृष्टि के द्वारा 3000 वर्ष प्रमाण आबादा करके आबादा से हीन तीसकोड़ा कोड़ी जो की प्रदेश रत्ता करते हुए चरम स्थिति में निश्चित द्रव्य प्रमाण है। सो जो अभी जो बांधा है एक समय पर
अभी नहीं, उसने जब बांधा था उसकी चरम स्थिति में पड़ा था।
नहीं सर्वसर्जित मिथ्या दृष्टि के द्वारा,
वही तो अभी यहाँ तो एक इंद्रिय की बात कर रहे हैं उसकी बात नहीं है।
नहीं पर यहाँ पे जो सर्वसंचित था तीस कोड़ा कोड़ी सागर तो पंचेंद्रिय बांध देगा
तो उसी की बात कर रहे हैं। किसके होता है ये तो जनरल कथन चल रहा है, यहाँ पर एक इंद्रिय में बंधे हुए की बात नहीं हो रही है। जिस किसी मिथ्या दृष्टि सर्व संकलेश ने तीस कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति बांधी थी
उसके
अंतिम निषेक में जो द्रव्य पड़ा था
हाँ।
फिर वो कालांतर से तीस कोड़ा कोड़ी सागर के बाद वो निषेक अभी उदय में आ रहा है उसका उत्कृष्ट संचय होगा यही कहना चाहते वहां पर।
क्योंकि मैं इसे समझा कोड़ा कोड़ी की प्रदेशता करते हुए चरम स्थिति में निश्चित द्रव्य प्रमाण है,
जब उसने बांधा था तो चरम स्थिति में पड़ा था वो अभी उदय रूप निषेक है। क्या आपको जब हम आगे बढ़ते तो आपको पहले का कुछ विचार चलता रहता है ना? पेज नंबर 44 निकालो। देखो यहाँ प्रमाण 44 का है तो यहाँ देखो ऊपर से दूसरी लाइन, तीव्र संक्लेश विलोम रूप से प्रदेश विन्यास का कारण है। तीव्र संक्लेश से बंधा हुआ उसकी जो प्रदेश रचना होती है निषेक रचना उल्टे क्रम से होती है, नीचे के निषेक में थोड़ा द्रव्य ऊपर के निषेक में अधिक द्रव्य, इसलिए कहते हैं कि विलोम रूप, विलोम यानी उल्टा क्रम, अनुलोम यानी नीचे का निषेक बड़ा ऊपर का कम, उसको अनुलोम ऊपर ज्यादा होता है नीचे कम होता है। तो कहते हैं तीव्र संक्लेश विलोम रूप से प्रदेश विन्यास का कारण है और मंद संक्लेश अनुलोम रूप से प्रदेश विन्यास का कारण है। तो उसका फल क्या है? तो कर्म स्कंधों का संचय करना ही उसका फल है, यही तो बता रहे। जब उसने तीव्र संकलेश से बांधा था तो अंतिम निषेक में उसने उत्कृष्ट द्रव्य डाला था वो अभी उदय रूप हो रहा है। अभी आगे जो हमने पढ़ा उसका आप ध्यान दे रहे थे कि आपके वो छूट गया है? पढ़ लो, जब हम आगे बढ़ेंगे तो उसका प्रश्न पूछना आपको। अभी हमने देखा था कषाय प्रावृत में जो एक अर्थाधिकार है उसमें जो बताया है चार प्रकार बताए उसमें, उत्कृष्ट स्थिति प्राप्त, निषेक स्थिति प्राप्त, अद्धा निषेक प्राप्त, उदय स्थिति प्राप्त। अभी हमने अद्धा निषेक तक पढ़ा, अभी नेक्स्ट पेज पर चलो। तथा जो कर्म जहां तहां उदय में देखा जाता है वह उदय स्थिति प्राप्त कहा जाता है, वो जो उदय रूप है बस और कहीं का भी हो वो पहले कहां बांधा था वो अभी उदय रूप है उसको उदय स्थिति प्राप्त कहते हैं। उनमें से मिथ्यात्व कर्म का अग्र स्थिति को प्राप्त हुआ द्रव्य एक अथवा दो परमाणु होते हैं, क्या कहा? देखो अग्रस्थिति किसको कहा था, देखो फिर से पढ़ो लास्ट पेज पर, देखो एक दो तीन चार पांच छह सातवीं लाइन नीचे से पेज नंबर 113 पर, उनमें जो समय प्रबद्ध कर्म स्थिति काल तक रहकर निर्जीर्ण होने वाला है, यानी समय प्रबद्ध बंधा था कब, तीस कोड़ा कोड़ी सागर पहले, अभी उसका यह अंतिम निषेक उदय रूप है, उस उदय स्थिति को प्राप्त हुए पुद्गल स्कंधों की अग्र स्थिति प्राप्त संज्ञा है, यानी वो बंधा कब था, तीस कोड़ा कोड़ी सागर पहले, और अब वो है मिथ्यात्व के लिए कब बंधा था, सत्तर कोड़ा कोड़ी सागर पहले, और वो अभी उसका अंतिम समय, अभी उसका उदय रूप स्थिति में है। तो उसके कितने परमाणु हो सकते हैं, एक परमाणु है ऐसा भी हो सकता है, दो परमाणु ऐसा भी हो सकता है, देखो यहाँ क्या लिखे है। तो उनमें से मिथ्यात्व कर्म का अग्र स्थिति को प्राप्त हुआ द्रव्य एक अथवा दो परमाणु होते हैं, इस प्रकार उत्कृष्ट रूप से सर्व संक्लिष्ट संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त के द्वारा कर्म स्थिति के अंतिम समय में जितना द्रव्य निषिक्त होता है उतना होता है, ऐसा कषाय प्रावृत में कहा है। इससे जाना जाता है उक्त भागहार अंगुल के असंख्यातवे भाग प्रमाण है। यानी वो भागहार क्यों है उसकी चर्चा की है, हमें तो समझ में आता है ना कि उसको कितना द्रव्य, ये कहां से बात आई थी, यहाँ पर भागहार प्रमाणानुगम की बात कहते हैं कि कर्म स्थिति के प्रथम समय में संचित द्रव्य का भागहार, उसका प्रमाण निकालने के लिए वो अंगुल के असंख्यात भाग से उसका वो भागहार होता है। अब पेज नंबर 114 पर आना, नया पैराग्राफ। हाँ जय धोला, कषाय प्रावृत्ति है ना, जय धोला। एक समय प्रबद्ध की निषेक रचना के अज्ञात होने पर, यानी जो जो पहले प्रति समय जो समय प्रबद्ध बनता है उसके निषेक रचना कैसी होती है यह अगर पता नहीं हो तो, इसके कहते हैं एक समय प्रबद्ध की निषेक रचना के अज्ञात होने पर चूंकि अंतिम निषेक का प्रमाण नहीं जाना जा सकता है, अतः उसके प्रमाण का निर्णय कराने के लिए एक समय प्रबद्ध के निषेकों की प्ररूपणा करते हैं। यानी जो समय प्रबद्ध बनता है उसकी निषेक रचना कैसी होती है वो यहाँ बताएंगे। उसमें छह अनुयोग द्वार है, यानी निषेक रचना में ये छह अधिकार बताएंगे। एक तो प्ररूपणा, दूसरा प्रमाण, तीसरा श्रेणी, चौथा अवहार, यानी उसका प्रमाण निकालने के लिए जो भागहार होता है उसको अवहार कहते हैं, पांचवा भागा भाग, और छठवा अल्पभूतव। उसमें भी सर्वप्रथम संगी मिथ्यादृष्टि पर्याप्त सर्व संक्लिष्ट जीव के द्वारा बांधे जाने वाले मिथ्यात्व कर्म की प्रदेश रचना की प्ररूपणा करते हैं, यानी वो सत्तर कोड़ा कोड़ी सागर वाला जो है उसकी बात यहाँ बताएंगे। यथा 7000 वर्ष प्रमाण आबाधा को छोड़कर, क्योंकि जो सत्तर कोड़ा कोड़ी सागर का बंध होता है उसकी आबाधा 7000 वर्ष है, तो उसका निषेक पहला निषेक कहाँ होगा, 7000 वर्ष और एक समय पर, इसलिए कहते 7000 वर्ष प्रमाण आबाधा को छोड़कर जो प्रदेशाग्र, जो प्रदेशाग्र ने जितने परमाणु प्रथम समय में निषिक्त होता है वह है या नहीं, उसकी प्ररूपणा कहे ना, वह है। जो प्रदेशाग्र द्वितीय समय में निषिक्त होता है वह भी है। प्रदेशाग्र ने वो प्रदेशों का समूह जो है, यानी अनेक परमाणु, अनंत परमाणु होते तो वहां पर भी है, दूसरे समय में, तीसरे समय में, ऐसे सत्तर कोड़ा कोड़ी सागर तक ले जाएंगे। इस प्रकार सत्तर कोड़ा कोड़ी सागरोपम के अंतिम समय तक ले जाना चाहिए, प्ररूपणा समाप्त हो। समझ में आई बात ये। अब कहते प्रथम स्थिति में, अभी दूसरा प्रमाण की प्ररूपणा कर रहे हैं, पहले प्रदेश की प्ररूपणा हो गई, अभी प्रमाण। प्रथम स्थिति, स्थिति यानी निषेक, प्रथम स्थिति में जो परमाणु निषिक्त तो होते हुए अनंत है, यानी जो निषेक रचना हुई है तो पहले निषेक में कितने परमाणु है, तो कहते अनंत है। इस प्रकार उत्कृष्ट स्थिति तक ले जाना चाहिए, ये प्रमाण की प्ररूपणा हो गई। सब में अनंत है, अनंत है। अभी उसका जो अल्प भूत वो बाद में बताएंगे कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ख्याल में। अभी मिथ्यात्व की वो तो इन जनरल बात है, खत्म नहीं हुई है ये तो, ये बीच में कोई रूल्स बता रहे हैं।
आप 10 बजे के बाद फोन करिए
कि वहाँ तो ज्ञानावरण में 30 कोड़ा कोड़ी की हो जाएगी, यहाँ मिथ्यात्व की बता रहे समझाने के लिए।
आप 10 बजे के बाद फोन कीजिए।
श्रेणी की 115 श्रेणी की प्ररूपणा दो प्रकार की है। अब श्रेणी ने प्रति वो तो पंक्तियां बनी, निषेक एक एक समय में एक एक निषेक बना है, तो प्रति निषेक में क्या डिफरेंस है और गुणानि गुणानि प्रति क्या उसका प्रमाण है वो बताएंगे यहाँ, उसको श्रेणी कहते हैं। तो श्रेणी की प्ररूपणा दो प्रकार की है, अनंतरोपनिधा और परम्परोपनिधा। यानी अनंतरोपनिधा ने प्रति निषेक कितने कम होते हैं परमाणु उसकी बात करेंगे, जिसको हम कहेंगे एक एक चय से कम होते हैं, और परम्परोपनिधा गुणानि गुणानि प्रति आधा आधा होता है प्रमाण परमाणुओं का, उसको कहेंगे परम्परोपनिधा। अनंत रूपनिधा अपेक्षा 7000 वर्ष आबाधा को छोड़कर जो प्रदेशाग्र प्रथम समय में निषिक्त होता है वह बहुत है। यानी पहले समय में जो पहला निषेक है उसमें परमाणु की संख्या ज्यादा है, मैक्सिमम है। जो प्रदेशाग्र द्वितीय समय में निषिक्त होता है वह विशेषहीन है, विशेषहीन है एक चय से कम है, एक एक चय घटता हुआ होगा। इस प्रकार विशेष हीन के क्रम से कर्म स्थिति के अंतिम समय तक ले जाना चाहिए। अब वो विशेष हीन का प्रमाण प्रति गुणहानि वो अलग अलग होगा। अब कहते हैं निषेक भागहार का, निषेक भागहार किसको कहेंगे याद है, बोलो अश्विन भाई। दो गुणहानि को निषेक भागहार कहते हैं, निषेक भागहार ये शब्द दो गुणहानि को सूची, एक गुणहानि आयाम जितना प्रमाण है हम हमेशा 8 मानते हैं, तो दो गुणहानि 16 होगी, वही हमारा निषेक भागहार है। तो निषेक भागहार का यानी दो गुणहानि का प्रथम निषेक में भाग देने पर, प्रथम निषेक का भागहार का अर्थ होता है प्रथम निषेक में जो परमाणु की संख्या है, यदि हम 6300 परमाणु मान लेते हैं समय प्रबद्ध की, तो पहला निषेक होता है 512 का। अब 512 को 16 से भाग देंगे तो 32 आ जाएंगे, तो जो द्रव्य प्राप्त होनी जो संख्या आती है उतना द्रव्य प्रत्येक निषेक के प्रति हीन होता हुआ, यानी यहाँ का चय है 32, 512 में से 32 कम कर दो तो दूसरा निषेक आएगा, उसमें 32 कम करो तो तीसरा निषेक आएगा, इस तरह से निषेक भागहार का अर्ध भाग व्यतीत होने तक जाता है, यानी एक गुणहानि तक जाता है, यानी 8 बार 32 32 कम हो गए, वहां दुगुनी हानि होती है, दो गुना हानि होना यानी आधा हो जाना, यानी 512 थे तो वो अभी 256 हो जाएंगे। इसी प्रकार सब गुणहानियों का कथन करना चाहिए। विशेष इतना है कि देखो अभी दूसरी गुणहानि में अभी कितना हुआ 256, उसको भी दो निषेक यानी दो गुणहानि से भाग देना, यानी एक निषेक भागहार से। पहले हमने 512 को 16 से भाग दिया था तो 32 आए थे, तो वहां का चय 32 था। अब 256 को 16 से भाग देंगे तो 16 आएगा, तो यहाँ का चय 16 होगा। 16 घटते घटते कितने बार घटेंगे, 8 बार घटेंगे, तो 256 से 128 हो जाएगी, तो उसको भी 16 से भाग दो तो यहाँ का चय 8 हो जाएगा, फिर 8 से घटते घटते उसके आधे हो जाएंगे, इस तरह से लेना। तो कहते हैं इसी प्रकार सब गुणहानियों का कथन करना चाहिए। विशेष इतना है कि यहाँ यानी यहाँ जो विशेषता बता रहे हैं, अवस्थित भागहार, रूपोन भागहार, रूपाधिक भागहार और छेद भागहार, इन चारों ही भागहारों को जानकर कहना चाहिए। इस प्रकार अनंत रूपनिधा समाप्त हुई। इसका अर्थ क्या है अश्विन भाई, निकालो 66 पेज, हमने पहले देखा था इसको योग में, देखा था कहीं, नया पैराग्राफ है ना वहां पर, देखो वहां तो वो जीवों की बात थी ना हमने, वो 16 से फिर बढ़ते हुए 32 होते, 64 होते, 128 होते हैं। वहां यही बात बताई थी, देखो वहां लिखते हैं, अब अनंत रूप निधा के आधार से अवस्थित भागहार, रूपाधिक भागहार, रूपोन भागहार और छेद भागहार, इन चार भागहारों द्वारा योग स्थानों के जीवों को उत्पन्न कराना चाहते हैं। इन शॉर्ट हमने देखा था तो जगन ने जो योग स्थान था उसमें 16 जीव थे, उसको चार का भाग दिया तो चार प्रक्षेप, यहाँ हम छह कह रहे, वहां प्रक्षेप का प्रमाण चार, वहां बढ़ते हैं ना योग मध्य तो बढ़ते फिर बाद में हीन होते हैं, तो 16 को चार से भाग दिया तो चार आ गए, चार उसमें अवस्थित भागहार है वो चार मिलाए, 20 आए उसमें भी चार मिलाए, वो पहले जो 16 था उसका भागहार चार रखा और उसमें एक एक प्रक्षेप मिलाते हुए 16 का 20 हुआ, 20 से 24, 24 से 28, 28 से 32 हुआ। अब कहते भी एक अधिक भागहार कैसा करेंगे, 16 को भाग दिया चार का तो आ गए चार आ गए, मिलाए 16 में तो आ गए 20। अब 20 को किससे भाग देना, पहला भागहार चार था उसमें एक मिला दो, पांच हुए, 20 को पांच से भाग दो, चार आए उसमें मिला दो, 24 आए, 24 को पांच एक छह का भागहार दो, फिर चार आए, 24 में चार मिलाओ, इस तरह से भागहार बदलते हैं। पहले 16 को ही भाग देते हैं चार का और वो चार चार हमने एक में मिलाते हैं, दूसरी बात जो आएगा उससे भागहार भी एक से बढ़ा दो, उससे भाग दो, इस तरह से ये भागहार होता है। रूपोन भागहार में भी ऐसी पद्धति बताई थी, कम करना है, तो ये हमने वहां विस्तार से देखा था। तो यहाँ पर भी भागहार इसी पद्धति से ला सकते हैं चय के लिए, ये बात बताई। अब यहाँ विशेषार्थ पढ़ते हैं 115 पेज पर, 115 विशेषार्थ। यहाँ दो शब्द आए थे, अनंतर उपनिधा और परंपरा उपनिधा। उपनिधा का अर्थ मार्गणा है, मार्गणा का अर्थ क्या होता है, खोज, अन्वेषण, ढूंढना है उसको, इसलिए अनंतर उपनिधा का अर्थ हुआ अव्यवहित, समीप के स्थान का विचार करना, अव्यवहित यानी उसमें बीच में कोई गैप नहीं छोड़ना, इमीडिएट नेक्स्ट, एक निषेक के इमीडिएट नेक्स्ट दूसरा निषेक, उसे निषेक तीसरा निषेक, इस तरह से स्थान का विचार करना। प्रत्येक गुणहानि के जितने निषेक होते हैं, हमने गुणहानि 8 की मानी है, यथार्थ में तो पल्ले के असंख्यात भाग प्रमाण कर्मों की गुणहानि होती है, यहाँ हमने प्रमाण 8 माना है, तो कहते प्रत्येक गुणहानि के जितने निषेक होते हैं, अभी हमारे उदाहरण में हमने 8 निषेक माने हैं, उनमें से प्रथम निषेक से दूसरे निषेक में और दूसरे निषेक से तीसरे निषेक में कितना कितना द्रव्य कम होता जाता है, इसका यहाँ विचार किया गया है, जिसको हम चय कहते हैं, एक चय से घटता चला जाता है। नियम यह है कि प्रथम गुणहानि के प्रथम निषेक से निषेक के द्रव्य से अगले गुणहानि के प्रथम निषेक का द्रव्य आधा रह जाता है। पहले गुणहानि का पहला निषेक 512 का था और वो 256 था, वो दूसरे गुणहानि का पहला निषेक था, 128 वो तीसरे गुणहानि का पहला निषेक था, वो द्रव्य आधा आधा होता है, चय भी आधा आधा होता है, और यह क्रम अंतिम गुणहानि तक चालू रहता है। इसलिए प्रत्येक गुणहानि में प्रथम निषेक से दूसरे निषेक में जितना द्रव्य घटता है उतना ही उत्तरोत्तर उस गुणहानि के अंतिम निषेक तक घटता जाता है, यानी किसी गुणहानि में उसका चय फिक्स है, एक गुणहानि के लिए वो फिक्स है, पर दूसरे गुणहानि में वो चय भी आधा होता है। अभी हमने क्या देखा था, हम 512 में से 32 कम हुए, उसमें 32 कम है, उसमें 32 कम है, वो सभी के लिए वो 32 का प्रमाण कांस्टेंट है। प्रथम गुणहानि के प्रथम निषेक से दूसरे निषेक में कितना द्रव्य घटता है, इसका निर्देश मूल में किया ही है। कितना द्रव्य घटता है, तो प्रथम निषेक का जो द्रव्य है उसके उसको दो गुणहानि से यानी निषेक भागहार से भाग देंगे तो जो प्रमाण आएगा वो चय का प्रमाण है, उतना द्रव्य दूसरे में कम होगा। अब यह हो गया अनंत उपनिधा। अब परंपरा ने गुणहानि गुणहानि प्रति डायरेक्ट बात करेंगे जम करके। परंपरा उपनिधा की अपेक्षा प्रथम समय में निषिक्त प्रदेशाग्र से यानी जो पहला समय जो पहला निषेक है उसमें जो द्रव्य है उसमें जो परमाणु है उससे पल्लोपम के असंख्यात वे भाग प्रमाण स्थान जाकर दुगुनी हानि होती है। दुगुनी हानि का अर्थ आधा रह जाता है। अभी हमने क्या देखा था, यहाँ पहले में 512 थे और पल्ले के असंख्यात भाग प्रमाण 8 निषेक जाकर वहाँ द्रव्य आधा होता है 256 हो जाता है। ये उसका अर्थ है। ये जो हमने 8 माने हैं तो हमने इमेजिनरी माने हैं, यथार्थ में पल्ले के असंख्यात भाग के जितने समय है उतने निषेक जाने के बाद वो आधा हो जाएगा, यानी मूल में भी अनंत है वो आधा अनंत हो जाएगा, क्योंकि अंतिम समय तक अनंत ही रहते हैं, फिर भी वो गुनहानी गुनहानी प्रति आधा आधा हो जाता है। इस प्रकार अंतिम दुगुणहानि तक ले जाना चाहिए। दुगुणहानि कहो या गुणहानि कहो एक ही बात है। विशेषण दुगुण यानी आधा, दो गुणा हानि यानी आधा रह जाना। विशेषार्थ पेज नंबर 116 परंपरोपनिधान में एक गुणहानि से दूसरी गुणहानि में कितना द्रव्य कम हो जाता है इसका विचार किया गया है। प्रत्येक गुणहानि में पल्ल्योपम के असंख्यात वे भाग प्रमाण निषेक होते हैं, जिसको हमने 8 निषेक होते देखा, इसलिए इतने स्थान जाने पर दूनी हानि हो जाती है, दो गुणी हानि का अर्थ होते आधा प्रमाण रह जाता है। यह बतलाना उक्त कथन का तात्पर्य है। अब यह जो परंपरा उपनिधा है उसमें 3 अनुयोग द्वार है, प्ररूपणा, प्रमाण और अल्पभूतव। कहते एक एक प्रदेश गुणहानि स्थानांतर है। देखो प्रदेश गुणहानि स्थानांतर कहो या गुणहानि कहो एक ही बात है। प्रदेश गुणहानि, प्रदेशों की संख्या आधी हो जाना, उसको कहेंगे प्रदेश गुणहानि, उसको एक प्रदेश गुणहानि कहेंगे स्थानांतर, यानी अपनी भाषा में एक गुणहानि होती है, यानी गुणहानि है बस इतना बता दिया। और नाना प्रदेश गुणहानि शलाकाएं भी है। यहाँ क्या कहते हैं, गुणहानिया भी है, एक एक गुणहानि भी है और नाना गुणहानि यानी अनेक गुणहानिया भी है। एक गुणहानि हमने देखा ना 512 वगैरह घटते घटते 200 ऐसे, और ऐसे कितनी गुणहानिया है, हम कहेंगे 5 है जो कुछ है उतनी गुणहानिया, नाना उसको नाना गुणहानि कहें, नंबर ऑफ गुणहानिया भी है। ये 2 का उसने कथन कर दिया, ये प्ररूपणा हो गई। अब उसका प्रमाण बताएंगे। दूसरा अनुयोग कौन सा है, प्रमाण, यानी गुणहानि का प्रमाण कितना है और नाना गुणहानियों का प्रमाण क्या है, उसकी बात यहाँ बता रहे हैं। एक प्रदेश गुणहानि स्थानांतर, ये पूरे का अर्थ होता है एक गुणहानि का आयाम, अपनी भाषा में गुणहानि आयाम। यानी गुणहानि आयाम कितना है तो उसको यहाँ क्या कहा, एक प्रदेश गुणहानि स्थानांतर पल्ल्योपम के असंख्यात प्रथम वर्गमूल प्रमाण है, यानी पल्ल्योपम के प्रथम वर्गमूल को असंख्यात गुणा करो इतने हैं, असंख्यात मल्टीप्लाइड बाय पल्ले का प्रथम वर्गमूल इतने हैं, यानी एक गुणहानि का आयाम कितना है, पल्ले के असंख्यात भाग प्रमाण है, तो पल्ले का असंख्यात भाग से भाग, पल्ले को असंख्यात से भाग दो तो उसका प्रमाण कितना आता है, पल्ले का प्रथम वर्गमूल मल्टीप्लाइड बाय असंख्यात। नाना प्रदेश द्विगुणहानि स्थानांतर शलाकाएं, अपनी भाषा में नाना गुणहानिया, पल्ल्योपम के प्रथम वर्गमूल के असंख्यात वे भाग प्रमाण है, वो प्रथम वर्गमूल को असंख्यात गुणा करो इतना एक गुणहानि का प्रमाण था, और नाना गुणहानिया कितनी है, वो प्रथम वर्गमूल के असंख्यात वे भाग प्रमाण है, जो पल्ल्योपम के अर्धच्छेदों से तो स्तोक है पर पल्ल्योपम के प्रथम वर्गमूल के अर्धच्छेदों से बहुत है। अभी थोड़ा इसका अर्थ देखने के लिए हम ऐसा समझते हैं, पल्ले के बदले हम पनट्ठी को लेते हैं, पनट्ठी यानी 64,536 जिसको हम पनट्ठी कहते हैं, तो पनट्ठी द्विरूप वर्गधारा में आती है, तो द्विरूप वर्गधारा 2 का वर्ग, पहला स्थान है 4, दूसरा स्थान है 16, तीसरा स्थान है उसका वर्ग 256, चौथा स्थान है ये, वर्ग का वर्ग का वर्ग, ये द्विरूप वर्ग धारा बता रही हूँ। मैं अर्धच्छेद किसको कहना वो मैं समझा रही हूँ। चार का अर्धच्छेद यानी चार का दो, कितने बार दो आपस में गुणा करने पर चार आते हैं, तो दो बार, तो ये उसका अर्धच्छेद है ये दो। 16 का अर्धच्छेद चार, 256 का अर्धच्छेद आठ, और इसका अर्धच्छेद 16। अभी हमने कुछ यहाँ कथन विशेष देखा था, देखो यहाँ क्या देखा था, देखो एक प्रदेश गुणानि स्थान पल्यपुम के असंख्यात प्रथम वर्ग मूल प्रमाण है, और नाना प्रदेश द्विगुणानि स्थानांतर शलकाय पल्यपुम के प्रथम वर्गमूल के असंख्यात विभाग प्रमाण है। अब यहाँ दूसरी बात बताए, जो पल्यपम के अर्धच्छेदों से तो स्तोक है, पर पल्यपम के प्रथम वर्गमूल के अर्धच्छेदों से बहुत है। अभी हमको इतना ही देखा है किसके अर्धच्छेद कितने होते हैं। पल्ले के बदले पनट्टी के अर्धच्छेद 16 है, और 256 जो उसका प्रथम वर्गमूल है उसके अर्धच्छेद 8 है, क्योंकि वर्गमूल के दुगुना तो उसके होते हैं ना। 256 वर्गमूल है, उसके अर्धच्छेद 8 है, तो पनट्टी उसका वर्ग है तो उसके अर्धच्छेद 16 है। तो ऐसी कोई जो संख्या है वो 8 से तो बड़ी है और 16 से छोटी है, ये कहना चाहते हैं यहाँ पर। तो कहते यह किस प्रमाण से जाना जाता है, क्योंकि नाना गुणानी शलाकाओं का विरलन करके, विरलन करने जितना नाना गुणानी का प्रमाण है उतना विरलन करो, दुगुणित करने के पश्चात यानी हरेक के ऊपर दो दो लिखो उसको गुणा करो, परस्पर गुणित करने पर पल्योपम के असंख्यात प्रथम वर्गमूलों की उत्पत्ति होती है। यह भी किस प्रमाण से जाना जाता है, कहते बाह्य वर्गणा में प्रदेश विरचित सूत्र से यह जाना जाता है, यथा यानी वो आगम में ऐसा बताया है, वहां प्रदेश विरचित अर्थाधिकार में छह अनियोग द्वार बतलाए है, यानी प्रदेश विरचित यानी प्रदेशों की जो रचना होती है उसमें जो कुछ अर्थाधिकार बताए हैं उसमें बताए हैं जघन्य अग्रस्थिति, अग्रस्थिति विशेष, अग्रस्थिति स्थान, उत्कृष्ट अग्रस्थिति, भागाभाग और अल्पभूत्व। उनमें जो अल्पभूत्व है वह तीन प्रकार का बतलाया है, जघन्य पद, उत्कृष्ट पद और जघन्य उत्कृष्ट पद। उनमें से जघन्य डैश उत्कृष्ट है, जघन्य और उत्कृष्ट दो सब में मिलकर ये है, यानी अल्पभूतों के तीन प्रकार है ना। देखो यहाँ उन्होंने संदृष्टि बताई, उसको देखते यानी जघन्य पद अलग बताया, उत्कृष्ट पद अलग बताया, जघन्य उत्कृष्ट पद बताता है। तो कहते उनमें से जघन्य उत्कृष्ट प्रदेश अल्पभूतों का कथन करते समय अंतिम स्थिति में प्रदेशाग्र सबसे स्तोक है। देखो अभी इसके लिए अभी यहाँ कोई पेज नंबर 121 पर कल ही देखेंगे, फिर अभी थोड़ा पढ़ लेते हैं। ये जो निषेक रचना होती है हमने देखा था 512, अभी फर्स्ट वर्टिकल कॉलम नीचे से ऊपर पढ़ना, 512 पहला निषेक है नीचे का, उसमें 32 कम हुए 480, 32 कम हुए 448, ऐसे वहाँ 288 तक गए, वहां से 32 कम करके 256 हो गए, यहां से दूसरी गुणहानि, फिर वो नीचे से ऊपर पढ़ना, फिर तीसरी गुणहानि नीचे से ऊपर, अब अंतिम गुणहानि राइट साइड में 16 से लेकर 9 तक, ये समझ में आई बात। तो अंतिम निषेक में 9 परमाणु है, यही कह रहे यहां पर अंतिम पेज नंबर 117, अंतिम स्थिति में प्रदेशाग्र सबसे स्तोक है, वहां 9 लिखे हैं। इसका अर्थ समझ में आया, इससे अंतिम गुनहानी स्थानांतर में प्रदेशाग्र असंख्यात गुना है। अंतिम गुनहानी स्थानांतर का अर्थ होता है पूरे अंतिम गुनहानी में सभी निषेकों की जो, देखो वहां पर निकालो 121 पेज, 9 प्लस 10 प्लस 11 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 14 प्लस 15 प्लस 16 सबकी टोटल होती है 100। इसको कहेंगे अंतिम गुनहानी का टोटल द्रव्य 100 है, यहां पर भी 100 लिखा है ना। इससे प्रथम स्थिति में प्रदेशाग्र असंख्यात गुना है, पहला निषेक 512 वाला है, वो 100 की अपेक्षा 512 पूरे अंतिम गुनहानी में जितना पूरा टोटल द्रव्य उससे भी ये अकेले पहले निषेक में असंख्यात गुना द्रव्य है। 100 से 512 ये असंख्यात गुना है। हाँ, इससे अप्रथम अचरम गुनहानी स्थानांतर में प्रदेशाग्र असंख्यात गुना है ऐसा कहा है। देखो हाँ, 9 और 512 को छोड़ दो, 577 नहीं, यानी 512 और 9 को मिलाकर 6300 में से माइनस कर दो। इस प्रकार इस अल्पभूत में अंतिम गुनहानी के द्रव्य का निर्देश करके उससे प्रथम निषेक का द्रव्य असंख्यात गुना ऐसा कहा, यानी 100 से 512 असंख्यात गुना कहा है। उसमें अंतिम गुणहानि का द्रव्य जो हमने 100 माना है वो एक्चुअल में कितना है, तो पल्योपम के असंख्यात प्रथम वर्गमूल प्रमाण अंतिम निषेकों का जितना द्रव्य हो उतना है। देखो क्या कहना चाहते हैं, यहाँ गुणहानि का प्रमाण कितना है, हमारी भाषा में 8 का है। एक गुणहानि में कितने निषेक होते हैं, 8। अंतिम निषेक का प्रमाण कितना है, अंतिम निषेक में द्रव्य अंतिम निषेक में 9। तो 9 9 9 अगर वो बढ़ता हुआ चाहे छोड़ दो तो 9 × 8 इतना तो उसमें द्रव्य है ना, तो 9 × 8 = 72 हो जाते हैं। यहाँ 100 है क्योंकि उसमें वो बढ़ता हुआ चय भी मिलाना चाहिए, तो यहाँ उन्होंने डायरेक्ट गुनहानि के प्रमाण से अंतिम निषेक को गुणा कर दिया। तो कहते अंतिम निषेकों का जितना द्रव्य हो उसको पल्ले के गुणा असंख्यात के भाग से गुणा कर दिया। उसकी संदृष्टि 9 को 100 / 9 से गुणा किया, 9 9 गए तो 100 आ गए। और प्रथम निषेक ये कल ही पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये सब यहाँ फिगर्स लेके हम उसको समझाएंगे, ये यहाँ इसी पेज पर से, इसी पेज शुरुआत से हम देखेंगे उसको। जावाणी के जानते सूझे लो पालो सोवाणी मस्तकनम सदा देत हो।